कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री धनचंद्र निर्वाणे, श्रीमती सुनंदा निर्वाणे, जयसिंहपुर, नेमीनाथ खोत, श्रीमती शुभांगी खोत, सरोजनी परमाजे सांगली, पौत्र केतन कुमार खोत पुणे, पौत्रवधु श्रीमती मेघा खोत पुणे, दामाद श्री अभिजीत पाटिल पुणे, पोती श्रीमती नेहा पाटिल पुणे, खोत निर्वाणे पाटिल नवले परिवार महाराष्ट्र।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंचपरमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज के वैयावृत्तिकरण भावना की आज पवित्र भावना का नाम है वैयावृत्तिकरण भावना। यह भी भावना अत्यंत महान है। इस भावना के महान होने के कारण वैयावृत्ति करने रूप जो सम्यक दृष्टि आत्माओं की क्रिया होती है, इस क्रिया को भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत समझ करके 16 कारण भावनाओं के अंदर इसको भी रखा है। किसी को यदि ज़्यादा ज्ञान नहीं है अक्षर ज्ञान नहीं है न स्वाध्याय है कुछ भी नहीं है तो वैयावृत्ति करना तो अवश्य सीख सकता है ना। तीर्थंकर प्रकृति को बांधना इतना जटिल काम नहीं है। ये तो गृहस्थ भी बांध सकता है, शर्त इतना ही है कि सम्यक दर्शन होना आवश्यक है। और स्वाध्याय करो या न करो, सेवा वैयावृत्ति करना भी अगर आपको आता है उसके माध्यम से भी अपने अंतरंग को आप पवित्र बना सकते हैं, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य बना सकते हैं। कितना सस्ता पड़ गया आज का दिन। वैयावृत्तिकरण भावना भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत हो सकता है। ऐसे कितने ही लोगों ने इतिहास में वैयावृत्ति करते करते तीर्थंकर प्रकृति के बंध को बांधा है। उसमें एक घटना स्मरण में आती है। प्रथमानुयोग को पढ़ते समय यह कथा आती है। शायद आप लोगों ने भी इस कथा को पढ़ा होगा। श्री कृष्ण एक जंगल के मार्ग से गमन कर रहे थे और एक वृक्ष के नीचे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज रत्नत्रय के धारी अपनी ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। अकस्मात दृष्टि उस मुनि महाराज के ऊपर श्री कृष्ण की दृष्टि जब पड़ी तो उनको लगा ये तपस्वी रत्नत्रय के धारी परम महान आत्मा तपस्या में तो लीन है लेकिन इनकी काया को देखते हैं तो मुझे तो ऐसा अंतरंग में आभास हो रहा है इस महान आत्मा के शरीर में कोई अवश्य गंभीर रोग हो सकता है। उन्होंने समीप आकर के परीक्षण किया तो जो अनुमान उसने किया था वो ठीक निकला। उस मुनि महाराज को जो रोग था उसका परीक्षण करने के लिए ठीक निदान करने के लिए एक वैद्य राज को बुला लिया। उस वैद्य राज ने मुनि महाराज के शरीर में कौन सा ऐसा रोग है जिसके वजह से शरीर क्षीण होता जा रहा है उन्होंने अच्छी तरह से परीक्षण किया। उनको पता भी चला कि ये कौन सा रोग है। पता चलने के पश्चात श्री कृष्ण से बातचीत हो गई। मुनि महाराज को ये फलाना फलाना रोग है और इसके लिए मैं औषधि बना करके दे देता हूँ और यह औषधि आपको रोज देना है जब तक यह रोग ठीक नहीं होता। कैसा देना है हम बता देते हैं, विकल्प नहीं करना है। आहार में प्रतिनित्य यह औषधि शरीर में जाता रहेगा तो यह रोग भी जाता रहेगा, ये ठहरेगा नहीं। मेरे द्वारा बनाई गई यह पवित्र आयुर्वेदिक औषधि शुद्ध औषधि इसको मोदक में मिक्स करके देना है। किसमें? मोदक में। मोदक मंजे का है लाडू, लाडू में मिक्स करके ये औषधि निरंतर देंगे और जब तक यह रोग ठीक नहीं होता तब तक देंगे, जब ठीक होएगा बंद करेंगे। श्री कृष्ण ने धन्यवाद दे दिया वैद्यराज को और उन्होंने अपनी शुद्ध औषधि को श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया तो प्रतिनित्य वे औषधि को देते रहे और प्रतीक्षा करते रहे कि यह रोग जल्दी ठीक हो रहा है या नहीं। सुपात्र कितने प्रकार के होते हैं? तीन, जघन्य सुपात्र, मध्यम सुपात्र और उत्तम सुपात्र। श्री कृष्ण जिसको औषधि दान के रूप में औषधि दान दे करके उपचार कर रहा है, वयावृत्ति कर रहा है, वे कौन से पात्र थे? उत्तम पात्र थे। दिगंबर मुनि उत्तम पात्र होते हैं और पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी श्रावक मध्यम पात्र होते हैं और जगन्य पात्र होते हैं सम्यक दृष्टि श्रावक जिन्होंने मिथ्यात्व का त्याग करके अपनी आत्मा को परमार्थ में लाकर परमार्थ की साधना में अपने आप को लगा चुका है और सम्यक दर्शन रत्न प्रकट हो चुका है, वे जगन्य पात्र कहलाते हैं। सुपात्र दान कहीं भी दे करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया जा सकता है। दान इतना महान है वह यह नहीं देखता कि किस पात्र में दान दिया जा रहा है। जो समीचीन दान होता है, यथार्थ दान होता है, जिसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, वह सुपात्र हो, बात खत्म। जरूरी नहीं कि मुनि महाराज ही हो, जरूरी नहीं कि मध्यम सुपात्र हो। जगन्य सुपात्र को दान देने पर भी सुपात्र दान की महिमा से जो विशुद्धि बढ़ती है, उस विशुद्धि के फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सकता है। दान तो एक क्रिया है, कर्तव्य है, जो मोक्ष मार्ग में चलते हुए रत्नत्रय स्वरूप तीर्थ को स्वयं धारण करके उस तीर्थ की प्रभावना कर रहे हैं, उन सत्पात्रों में दान देने का परिणाम भी आत्मा के लिए विशुद्धि का कारण बनता है। और ऐसे विशुद्धि को धारण करने वाले और उत्तम सुपात्र मिले तो उत्तम सुपात्र निमित्त बन गए श्री कृष्ण के लिए। उन्होंने उत्तम सुपात्र में औषधि दान देते हुए साक्षात नेमिनाथ भगवान के समोसरण में जाकर उनके पाद मूल में इस वैयावृत्तिकरण भावना के माध्यम से इसको फेवरेट बना लिया ना। श्री कृष्ण को कौन सा फेवरेट बन गया? श्री कृष्ण इतने दयालु थे, उनके पास क्षायोपशमिक सम्यक्त्व था, और इस क्षायोपशम सम्यक्त्व के लक्षण भी होते हैं तो चार होते हैं, प्रशम, अनुकंपा, संवेग और आस्तिक्य। ये चार लक्षण होते हैं। अनुकंपा ये जीव दया का, और किसका? जीव दया का आधार है। सम्यक दृष्टि जीव जब संसारी प्राणियों को दुखी देखता है तो उसको दुख दूर करने के लिए वो भले ही अपने तरफ से दे नहीं पा रहा हो, लेकिन भावना तो करेगा ही करेगा। दुखी जीवों को देख करके सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ऐसी भावना न भाव ये कभी हो नहीं सकता। यद्यपि कृष्ण महाभारत में भाग लेकर के बड़े बड़े युद्ध भी करते हैं और उसके माध्यम से कितने ही प्राणियों की हिंसा भी होती है, लेकिन यहाँ देखिए उनकी दया भाव कि वे दिगंबर मुनि महाराज को औषधि दान देकर रोग को ठीक करके नेमिनाथ भगवान के समोशरण में उनके पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करते हैं। ये दान का प्रभाव है, ये वैयावृत्ति का प्रभाव है। वैयावृत्ति यानी सेवा। सेवा किसकी करे? सेवा सबकी करे, सेवा सबकी करे, लेकिन दान किसको दें? तो यहां पर अनुशासन आता है, आगमानुशासन यहां पर है। दान के योग्य कौन? जिनको पात्र समझ करके हम दान देते हैं, दान देने के योग्य पात्र कौन? तो कहते तीन, जिसके माध्यम से पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है, जिसके माध्यम से देने वाले दाता के भावों में परम पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं, और उसके माध्यम से स्वयं का भी कल्याण करता है और पात्र का भी उपकार करता है और निस्वार्थ बुद्धि से ये कार्य करता है। ऐसे सम्यक दृष्टि दाता जब सुपात्र में दान देता है तो ये सुपात्र दान तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण पड़ जाता है, फेवरेट बन जाता है, और वही विशुद्धि तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में जब चला जाता है तो वह फेवरेट भावना एक, और एक मूलभूत भावना सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि और वैयावृत्तिकरण भावना, ये दोनों ही मिलकर के श्री कृष्ण को तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण बन गया। और वे भविष्य में अब तीर्थंकर होने वाले हैं। कहाँ के तीर्थंकर बनेंगे ये बात अलग है, लेकिन तीर्थंकर बनेंगे ये फिक्स हो गया है। श्री कृष्ण तीर्थंकर बनने वाले हैं फिक्स हो गया है। ये किसका प्रभाव? वैयावृत्तिकरण भावना का प्रभाव है। वैयावृत्ति सुपात्रों की जब हम करते हैं तो वह अमृत होता है, अमृतमय होता है। सत्पात्रों की वैयावृत्ति करते समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो हो सकता है, विशुद्धि भी बढ़ सकती है, लेकिन कुपात्रों के दान से भगवंतों ने रोकथाम किया है भव्य जीवों को। कुपात्रों में दान नहीं देना। क्यों कहा? विशुद्धि नहीं बढ़ती है क्या? नहीं। कुपात्रों में दान देते हुए गुणों का चिंतन कैसे करोगे? जहां दोष हो वो कुपात्र, और जहां गुण हो वह सुपात्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये गुण है, और इसके विपरीत तीन दोष हैं। दोषयुक्त आत्मा कुपात्र की कोटि में आता है या तो अपात्र की कोटि में आता है, और गुणयुक्त आत्मा सुपात्र की कोटि में आता है। दर्शन ज्ञान ये दो हो और संयम न हो तो जगन्य सुपात्र। सम्यक दर्शन भी सुरक्षित हो पात्र के पास और अनुवृत्ति हो, पंचम गुणस्थान वृत्ति हो तो मध्यम सुपात्र। सम्यक दृष्टि भी हो और महावृत्ति हो तो वह कौन सा पात्र? उत्तम सुपात्र। इन तीन सुपात्रों में दान देने वाला दाता यदि तीन सुपात्रों को निमित्त बना करके अपने आत्मा के परिणामों को विशुद्ध कर देता है तो वह यदि आसपास में कोई केवली श्रुत केवली मिले और उनका पादमूल प्राप्त हो गया तो वहाँ जा करके यही विशुद्धि और अधिक हो जाती है, और उस अधिक विशुद्धि के माध्यम से, विशुद्धि की उस उत्कृष्टता से तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है और स्वयं भी तीर्थंकर बन सकता है दाता। जो दाता है वह भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, और जो दाता नहीं है पात्र है, पात्र भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तो पात्र कैसे कर सकता है? दान तो देता नहीं है, तो दान से भले ही ना करे किंतु अन्य भी भावनाएं हैं कि नहीं, वो पात्र में लागू हो सकते हैं, पात्र के लिए लागू हो सकते हैं। पात्र यदि निरंतर निरंतर स्वाध्यायशील है, स्वाध्याय करने से जिनकी आत्मा की पवित्र भावनाएं, भावनाओं की उत्कर्षता बढ़ती है, तो वो पात्र स्वाध्याय के माध्यम से, स्वाध्याय को फेवरेट बना करके यदि ज्ञानोपयोग को निर्मल करता चला जाता है तो स्वाध्याय निमित्त बन सकता है। प्रवचन भक्ति और एक और है ना लास्ट में, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, एक और है नहीं दो, स्वाध्याय संबंधित एक और है, प्रवचन वात्सल्य, हाँ लास्ट वाला, प्रवचन वात्सल्य, वात्सल्य देखिए आप, वात्सल्य, वात्सल्य किसको कहते हैं? वात्सल्य दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना, अनुराग, वात्सल्य। प्रवचन के प्रति वात्सल्य, प्रवचन क्या है? जिनेंद्र भगवान की वाणी को प्रवचन कहते हैं। तो प्रवचन सुनने में जिनका चित्त सदा ही तन्मय रहता है, प्रवचन सुनने के लिए जो सतत ही आतुर रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, ये प्रवचन वात्सल्य भावना भी कारण है। ज्ञान दान तो है, अभयदान भी, अभयदान भी है। अभयदान तो भावना से होती है। सब जीव सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, ये क्या है? ये अभयदान तो है ही कि जीव इस प्रकृति को बंद करके स्वयं तीर्थंकर बने और संसार के संकटों से मुक्त हो जाए, स्वयं भी मुक्त हो जाए और संसार में रहने वाले प्राणियों को भी मुक्त करा दे, ये भावना भी अभयदान तो है। दान के अधिकारी मुनि अवश्य हैं। मुनि महाराज ज्ञान दान देते हैं, अभयदान देते हैं, किंतु आहार दान कैसे देंगे, औषधि दान कैसे देंगे? मुनि महाराज औषधि दान तो देते हैं, लेकिन परम औषधि दान देते हैं, ये औषधि दान नहीं देते। परम औषधि, ये औषधि तो शरीर का रोग दूर कर दे, लेकिन परम औषधि तो भव की पीड़ा का हरण करता है। भव भव की पीड़ा को हरण करने के लिए कौन सी औषधि चाहिए? ज्ञान की औषधि चाहिए, सम्यक ज्ञान की औषधि चाहिए। साढ़े तीन साल की निर्जरा स्वाध्याय में सबसे आगे चली गई है, सबको पीछे छोड़ा है उसने। ये स्मरण शक्ति, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम किसकी देन है? यह देन है सम्यक्त्व की, सम्यक्त्व की आराधना की और सतत स्वाध्याय में लीन रहने का परिणाम है। इसने पूर्व भव में कहीं ना कहीं ये काम किया है, जबरदस्त काम किया है, ये पूर्व भव का पुण्य होता है। और यह क्षयोपशम ऐसा ही रहा और उसकी विशुद्धि बढ़ती गई। स्त्री पर्याय से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होगा, पुरुष पर्याय से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, लेकिन निर्जरा स्वयं बोल रही है, मैं स्त्री पर्याय में नहीं जाऊंगी, अगले भव में पुरुष रहूंगी, उसको कन्फर्म हो गया है। ये वो कहती है, ये पर्याय हमारी अंतिम पर्याय है, अगला पर्याय तो हमारा पुरुष पर्याय। निर्जरा जब 13 महीने की थी, आशीर्वाद लेने के लिए उसके माता पिता हमारे पास ले आए थे, हमने पीछे उठा करके उस पर आशीर्वाद किया। ये तो 13 महीने की है, अभी तो बोलती भी नहीं थी, दहीगांव में। और अभी कितने साल की? 3.5 3 साल 8 महीने की है। दहीगांव से यहाँ पर आ करके मैं उसको देख रहा हूँ कि मेरे साथ बोलने लगी, मेरे से पढ़ने लगी और नए नए प्रश्न करने लगी। मेरा प्रवचन तो इतनी अच्छी तरह से, दशलक्षण में गए साल, जयसिंहपुर में गए साल, माता पिता के साथ बैठ करके भगवान की उन्होंने 10-16 दिन तक पूजा भी किया और प्रवचन इतना ध्यान से सुनती है वो, इस प्रवचन को सुनकर के इनमें से क्वेश्चन निकालती है और माता पिता को पूछने लगती है कि इसका अर्थ क्या महाराज ने बताया, हमको बताओ। मुझे ऐसा लगता है बड़ों के लिए अवसर्पिणी है और छोटों के लिए उत्सर्पिणी शुरू हो गया है। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि अवसर्पिणी काल में ये बताया गया है कि बुद्धि शक्ति घटती है, आयु घटती है, शरीर की ऊंचाई घटती है, हर चीज़ घटती है अवसर्पिणी काल में। लेकिन ऐसे बच्चों को जब हम देखते हैं तो लगता है इनमें उत्सर्पिणी काल प्रारंभ हो गया है। अभी छोटी उम्र में ये सब ध्यान रखने का मतलब, ये पूरी पुस्तक ध्यान में है उसको। 148 प्रकृतियों का नाम याद और 148 प्रकृतियाँ किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक बंद, किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक उदय, किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक उदीर्णा, किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक सत्व, ये सब चीज़ें उनको कंठस्थ है, कंठस्थ है। और उसको उसको दो बार कहने पर पूरा याद हो जाता है, बार बार रटाना नहीं पड़ता, एक दो बार दोहरा दिया उसको बैठ गया, बैठ गया तो ऐसा बैठ गया शाश्वत बैठ गया। ये आगे जाकर के गूगल गर्ल बनेगी, गूगल गर्ल। गूगल गर्ल आजकल व्हाट्सएप में आते रहते, हमको ला करके लोग दिखाते रहते हैं व्हाट्सएप में। आजकल छोटे बच्चों को, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं, वहाँ पर गूगल गर्ल, गूगल बॉय और गूगल गर्ल के नाम से फेमस हो गए हैं कुछ बच्चे। एक बच्चा था जो 5 साल का था, उसके लिए दुनिया के किसी भी कोने का कुछ भी पूछो, जिसको एटलास कहते हैं ना, स्कूल में रहता है लोग पर कोर्स में एटलास, एटलास बुक, उस एटलास बुक में से कहीं से कहीं तक कौन सा देश कहाँ है, क्या है, नदियाँ कितनी हैं, पर्वत कितने हैं, उनका नाम क्या है, कुछ भी पूछो सब कुछ उत्तर देता है। उसका नाम कौटिल्य पंडित, 5 साल का पंडित, कौटिल्य पंडित 5 साल का था। और उसको भी ऐसा ही है, एक दो बार सुना दो, एक बार फिट बैठ गया तो खेलते खेलते ही पढ़ लेता है, खेलते खेलते सुन लेता है, खेलते खेलते जिस बात को सुन लेता है वह माइंड में फिट हो जाता है। ऐसे कुछ बच्चे कहना चाहिए इस युग में पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों के युग में हम पैदा हो गए, आश्चर्य देखने के लिए हम भी भाग्यशाली हैं। बच्चों के युग में हम ऐसे पैदा हो गए, ये बच्चे इतने क्षयोपशम को लेकर के कैसे पैदा हो गए, यही तो हुंडावसर्पिणी काल का प्रभाव है ना। कहीं ना कहीं वह ऐसा भी करता होगा, कुछ अच्छों को भी जन्म दिला देता है तो कुछ बुरों को भी जन्म दिला देता है। ये हुंडावसर्पिणी काल का प्रभाव होते हुए भी कुछ अच्छाइयाँ देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी विशेष बात है। निर्जरा को गुणस्थानों का नाम 14, आप सीधा भी पूछ लो और वापस उल्टा भी पूछो, रिपीट कर सकती है। आप बोलो देखेंगे उल्टा गुणस्थानों का नाम, सीधे नहीं बोल सकते आप, उल्टा कैसे बोलेंगे। प्रतिमाओं का 11 प्रतिमाओं का नाम, 3.5 साल की उम्र में आपको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, 3.5 साल की उम्र में किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया धर्म का, 3.5 साल की उम्र में यह निर्जरा पूरे शास्त्र को रट चुकी है। इसका क्षोभशम बहुत आगे बढ़ेगा और उसकी भावना देखिए आप आगे जाकर क्या बनेंगे। तो कहते शादी नहीं करूंगी और आरिका बनूंगी, अभी से कह रही है निर्जरा। उसको आरिका बनने के भाव हैं और अभी से इतना क्षयोपशम है तो जिंदगी भर कितना ज्ञान एकत्रित करेगी, ये तो गूगल ही बन जाएगी। कुछ भी पूछो इसके भीतर से उत्तर तुरंत निकल के आएगा। एक बार इसे आचार्य श्री के पास ले जाएं और ये कार्यक्रम कराया जाए तो आचार्य श्री का आशीर्वाद और मिल गया। गुरु का आशीर्वाद इस ज्ञान के लिए और मिल गया तो ये ज्ञान चमकेगा और यह ज्ञान अगली बहु में जा करके इस निर्जरा के लिए पूरे कर्मों की निर्जरा करा के केवल ज्ञान के रूप में ही ढल जाएगा ये ज्ञान। अभी तो ज्ञान उनका क्षयोपशमिक है, क्षयोपशमिक ज्ञान में इतना अतिशय होता है तो केवल ज्ञान में कितना बड़ा अतिशय होता होगा आप विचार करिए। क्षयोपशमिक ज्ञान ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारणीभूत है। इसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इन दो ज्ञानों की भूमिका बहुत विशेष होती है केवल ज्ञान की उत्पत्ति में, इन्हीं की होती है, बाकी ज्ञान तो काम में आते ही नहीं है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में अवधि ज्ञान काम में नहीं आता। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए मन परे ज्ञान भी कोई कार्यकारी नहीं है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञान अपने पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा के भीतर रहने वाले कर्म कलमशों को दूर, ये दोनों ज्ञान मिल करके दूर कर लेते हैं तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इतनी छोटी उम्र में आप कल्पना करिए, 3.5 साल की है, किस गुणस्थान है इनका। निर्जरा को उत्तर मालूम है, आपको उत्तर कहाँ मालूम है। निर्जरा बता सकती है कि मेरा गुणस्थान कौन सा है 3.5 साल की उम्र में। आप लोगों को मालूम नहीं है। पहला गुणस्थान परिवर्तित होता है कितने साल की उम्र में, कितने बड़े होने के बाद। हाँ, 8 साल अंतर मुहूर्त व्यतीत होने के बाद ही दर्शन ज्ञान और चारित्र को धारण करने की योग्यता आती है, पात्रता आती है, उससे पहले नहीं। और ये उत्तर निर्जरा को मालूम है, मुझे अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि निर्जरा को देख करके इसको सम्यक तो नहीं है। जिसको धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है उनको देख करके हम ये लग सकता है कि इसको धर्म का कुछ भी पता नहीं है, ये सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, अनुमान कर सकते हैं। देखो इतना ज्ञान होने के बाद आप उसमें सम्यक तो है या नहीं, कोई शंका हो सकती है, नहीं हो सकती। सम्यक तो झलकता है ना। और निर्जरा को तो संकल्प है कि मुझे आरिका बनना है, तो अभी से वह श्रद्धा वह विशुद्धि अभी से है, तो सम्यक दर्शन इस उम्र में भी प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन भगवान ने कह दिया 8 साल, बहुत लेट कर दिया। इन बच्चों को देख करके जब ये आहार आदि देने के लिए मेरे पास आते हैं तो इनको देख करके ऐसा लगता है इन्हीं के हाथ से केवल लेना चाहिए, बड़ों को जरा किनारा करना चाहिए। पता नहीं कैसे ऐसे परिणाम क्यों होते हैं, बच्चों को देखते ही उनके हाथ से लेने के भाव साधु को होते हैं। आप लोगों से नहीं होते ऐसा नहीं, लेकिन आपसे ज्यादा उनसे होते, उनके लिए होते हैं। बच्चे साफ सुथरे रहते हैं अंदर से, उनके अंदर कोई कलमश नहीं होता। जिनका मन अत्यंत चंचल होता है और भीतर से मलिन होता है, उनका मेमोरी कार्ड खराब होता जाता है। रहता है अच्छा, जन्म के साथ जो निर्मल रहता है उसके ऊपर मन की चंचलता से और अंदर की कलमशता से कषाय है, राग द्वेष है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष करते समय ही ज्ञानावरणी कर्म का बंद होकर बुद्धि शक्ति हमारी घटती है, मेमोरी पावर कम हो जाता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जरा स्मरण शक्ति कम होती जा रही है, हम क्या करें? महाराज ये बता दो कि क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए? तो क्या ये बता दूं, बादाम खा लेना, दूध पी लेना, देसी गाय का घी सेवन करना, तुम्हारी बुद्धि शक्ति बढ़ेगी? इन बाह्य पदार्थों से तो ये जो मेमोरी कार्ड यंत्र है उस यंत्र में बल आ सकता है, लेकिन बुद्धि बढ़ेगी जब भी बढ़ेगी ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभशम से ही बुद्धि बढ़ेगी। खाने पीने वाली उन वस्तुओं से बुद्धि नहीं बढ़ती, खाने पीने वाले वस्तु बहुत अच्छी हैं और ज्ञानावरणी कर्म का तीव्रोदय है तो उसकी बुद्धि कैसी बढ़ेगी? कुछ भी खाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बुद्धि शक्ति बढ़ने का पुरुषार्थ क्या है? इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? घी बादाम तो उत्तर नहीं है ना। इसका उत्तर क्या होगा? बुद्धि शक्ति बढ़ाना है। तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में, मोहिनी कर्म के उदय के साथ साथ हम जो जीवन जी रहे हैं, ज्ञानावरणी कर्म का बंद तो मोहिनी कर्म के निमित्त से ही हो रहा है। ज्ञानावरणी कर्म प्रबल बनता है, शक्तिशाली बनता है तो बुद्धि घटती है, और उसमें शक्ति घटती है तो बुद्धि की शक्ति बढ़ती है। ज्ञानावरणी कर्म का अनुभव फलदायक शक्ति जो होती है वो तीव्र हो तो बुद्धि घटेगी, और वह तीव्रता कम होता होता कम हो जाए तो बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे अनुभव घटेगा वैसे बुद्धि बढ़ेगी, और जैसे बुद्धि बढ़ेगी वैसा वैसा हमको महसूस होगा कि हम पहले की अपेक्षा से बहुत ठीक हैं। और ऐसा ठीक रहने वाला व्यक्ति, जरूरी नहीं कि उसने घी खाया है, बादाम खाया है, दूध पिया है, नहीं, मुनि महाराज छों रसों का त्यागी होते हैं। देखो आचार्य श्री को देखिए, कुछ भी नहीं लेते आहार में, रूखा सूखा आहार, कब से कितने साल हो गए, लेकिन उनकी बुद्धि शक्ति देखिए आप। आहार कारण है ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा विश्वास नहीं होता। ये आहार कारण है बुद्धि शक्ति बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं लगता। ये क्षयोपशम बढ़ा कैसे? आचार्य ने एक बार आरिकाओं को दीक्षा दी, एक बार कितने 58 आरिका दीक्षा दी कुंडलपुर में, और हमने लोगों से सुना कि ऐसे ऐसे आचार्य ने 58 दीक्षाएं दी और क्रमशः उनको नामकरण भी किया। नामकरण करने के बाद आचार्य श्री के सामने कौन सी आरिका आई, उनका नाम क्या है, ये दीक्षा देने के पश्चात तुरंत बताते थे। आप बताइए, देखेंगे आपके सामने 50-60 लोगों को खड़े कर देंगे, उनको आप नया नाम रखते जाओ, आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, सबको खिसका दो, और फिर बाद में जो आपने नाम दिया है उस व्यक्ति को यही तुमको नाम दिया था ये दोहरा देना, देखेंगे संभव है? बहुत मुश्किल है। और जब से मुनि दीक्षा ली है तब से नीरस भोजन चल रहा है, फिर भी बुद्धि शक्ति में कोई अंतर नहीं है, वही स्मरण शक्ति है। ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कहलाता है, ये विशुद्धि का परिणाम है। जिसको मोहिनी कर्म का प्रभाव कम रहता है उसकी बुद्धि शक्ति बढ़ती ही बढ़ती है। बुद्धि को बढ़ाना हो तो क्या करें? कुछ नहीं करना। क्या करना? राग द्वेष नहीं करना, मोहिनी कर्म के उदय में क्रोध मान माया लोभ नहीं करना, कषाय को मंद रखना। मोहिनी कर्म अगर मंद है तो ज्ञानावरणी कर्म में अधिक स्थिति बंद अनुभाग बंद नहीं पड़ता। ज्ञानावरणी कर्म पुष्ट होता है किस कर्म के वजह से? मोहिनी कर्म के वजह से। आपने बहुत जोर से क्रोध किया, बहुत हठी बन गई, मान कषाय बहुत तीव्र हो गया, बहुत लोभ पैदा हुआ, तो इस काल में ही ज्ञानावरणी कर्म में उत्कृष्ट स्थिति बंद अनुभाग बंद आदि पड़ता है। और जब ये उत्कृष्ट अनुभाग बंद स्थिति बंद पड़ता है तो हमारा मेमोरी कार्ड तो रहता ही अंदर, उसमें कुछ फर्क नहीं रहता। मेमोरी कार्ड तो मेमोरी कार्ड है, शरीरगत है, उसमें लेकर रखने की एक शक्ति भी होती होगी। और उसमें जो बुद्धि शक्ति है वह बुद्धि शक्ति बढ़ती है राग द्वेष को कम करने से। सदा शांत रहना चाहिए, सद्विचार करना चाहिए, भावों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमारे लिए जो योग ऊर्जा मिली है, योग शक्ति मिली है, कायिक बल, काय बल, काय योग है, इस बल का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वचन बल, बोलने की शक्ति मिली है, वचन बल है अपने पास। मनोबल, विचार करने की शक्ति हमारे लिए मिली है, वो मनोबल है। इन तीनों का सदुपयोग करने से। सदुपयोग कैसे किया जाए? मोहिनी कर्म के उदय में हम सतत ये चिंतन करें, यह मोहिनी कर्म है और मेरे लिए हानिकारक है, मेरे आत्मा को अशांत बनाने वाला यदि कोई है तो ये मोहिनी कर्म है, इस मोहिनी कर्म को हम तीव्र होने नहीं देंगे। ये संकल्प करो, आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, निश्चित बढ़ता ही नहीं जाएगा। निर्जरा जैसे आप भी निर्जरा करने लग जाएंगे, खूब कर्मों की भी निर्जरा करेंगे। बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए कषाय को मंद कर दो, बस। भगवान को देखो, हे भगवान, आप जैसे कषाय मुक्त होने का लक्ष्य मेरा है, ये कषाय कभी तीव्र ना हो। भगवान को देखते हैं तो ऐसा विचार आना चाहिए। और जब हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय करते समय भी, हे भगवान, मुझे ये सब याद नहीं रहता, ये याद इसलिए नहीं रहता, मैंने पूर्व भव में बहुत तीव्र कषाय किया है और उस तीव्र कषाय के कारण से उस समय में बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्म उत्कृष्ट अनुभाग वाले आज हमारी बुद्धि के लिए बाधक बन रहे हैं। सत्तागत ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र तीव्र अनुभाग को आप घटाना चाहते हैं तो मोहिनी कर्म को मंद करना पड़ेगा, यही ज्ञान को बढ़ाने का कार्य है। देखिए, हम भोजन करते हैं, भोजन करते समय रसों के प्रति आत्मा के भीतर तीव्र लोभ कषाय हुआ, तीव्र इच्छा हुई। इच्छा तीव्र करेंगे तो तीव्र हो सकती है, इच्छा को हम दबाएंगे तो दब सकती है, कंट्रोल में रख करके चलेंगे तो कंट्रोल में रह सकती है। भोजन करते समय इन षड रसों के प्रति हम मंद कषायी बन करके भोजन करेंगे तो उस वक्त तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंद नहीं होगा। हर समय हमको जागृत रह करके हर काम करना चाहिए। हर काम में हमारा मोहिनी कर्म हमारे वश में है, तीव्र नहीं है और मंद है, तो निश्चित रूप से कोई भी कैसा भी आत्मा हो उसका ज्ञान बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। यही सत्य है, यही सत्य है। बुद्धि तो बहुत अच्छी बने हमारी, हम सोचते हैं, लेकिन उस अच्छी बुद्धि के लिए क्या करना चाहिए रास्ता पता नहीं रहता। भगवंतों ने बताया है, बुद्धि को अच्छी बनाना हो तो कषाय को कंट्रोल में रखो, राग द्वेष मत करो। भोजन करते समय भी यह विचार करो, इस भोजन के प्रति मूर्छित होना आवश्यक नहीं है, भोजन के प्रति इच्छा को तीव्र करना आवश्यक नहीं है। ये भोजन तो शरीर के प्राणों की सुरक्षा के लिए है, शरीर को स्थिर रखने के लिए है। मैं भोजन को शरीर स्थिर रखने के लिए दे रहा हूँ, इसके प्रति मुझे कोई भी इच्छा भाव नहीं है। देखिए आप, भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन करते समय कोई वस्तु कम पड़ गई तो कितना गुस्सा आता है। उपवास करने के बाद आप भोजन करते हैं, उपवास के दिन तो कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन भोजन करते समय परोसने वाला कोई गड़बड़ी कर दिया तो आपको कैसा लगता है। कल उपवास था, ख्याल नहीं रखते थे कोई इतना भी। उपवास था, ख्याल नहीं रखते। अंतरंग में द्वेष भाव उत्पन्न होता ही है, उसी वक्त संभालना है। बुद्धि को हम निर्मल चाहते हैं और विशेष चाहते हैं, निर्जरा जैसा क्षोभशम हो ये चाहते हैं, तो अनुभाग शक्ति को घटाओ, उसकी उदीर्णा करो, उसकी निर्जरा करो ना, तो निर्जरा जैसी बुद्धि होगी। निर्जरा करो, निर्जरा जैसी निर्जरा ने निर्जरा किया है, करके आई है, इसलिए इतनी अच्छी बुद्धि उसकी है। ज्ञानावरणी कर्म में जो अनुभाग शक्ति है ना, उस अनुभाग शक्ति को उन्होंने बहुत घटाया है। इतना पुरुषार्थ किया है कि वो मंद कषाई बनी होगी पूर्व भव में। उस मंद कषाई के फलस्वरूप बुद्धि शक्ति पूर्व भव की इस भव में आ गई है। उसको सब कुछ याद रहता है, एक दो बार बता दो सब कुछ याद रहता है, चाहे प्रश्न का उत्तर हो याद रहता है, कोई भेद प्रभेद आपको पढ़ाओ वो भी याद रहता है। अब ऐसे बच्चों को जब पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय पढ़ाने वाला अगर उल्टा पढ़ा दिया तो उल्टा भी बैठ सकता है, गलत पढ़ाओगे तो गलत बैठेगा, सही पढ़ाओगे तो सही बैठेगा। कोरे स्लेट पर आप जो लिखोगे वही वो शाश्वत होगा, इसलिए उसके पिताजी को चिंता होती है। प्रश्न निर्जरा जब प्रश्न करती है तो मुझे तो उत्तर उसका मालूम नहीं है, तो किस तरह से मैं उत्तर दे दूं, तत्काल तो दे नहीं सकता। अब वो थोड़ा बहुत शास्त्र उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं, फिर बाद में उत्तर देते हैं। शास्त्र में प्राप्त करने के बाद, शास्त्र से उत्तर मिलने के बाद उत्तर देते हैं। मुझे बता रहे थे वो, निर्जरा बहुत प्रश्न करती है मेरे से, बहुत तर्क करती है, और मैं गलत बता दूं तो वो भी बैठ सकता है उसमें, उसको डर है उसके पिता को। मैं उल्टा कह देता हूं तो उल्टा बैठेगा, और सही कहता है तो सही बैठेगा, वो प्रभावना का कारण बनेगा। हमने कुछ बता दिया और वह गलत हो गया तो सभा में बोल रही है ज्ञानावरणी, मिथ्या तो कर्म का बंध कहाँ से कहाँ तक होता है। निर्जरा कहती पहले गुणस्थान में इन्होंने देख करके कुछ कहा होगा तभी तो बैठ गया वो। गुरु अच्छे हों तो शिष्य अच्छे निकलते हैं, गुरु ने ही उल्टी पाठ पढ़ा ली तो शिष्य भी सभी उल्टे निकलेंगे। ये क्षायोपशम कहलाता है। अब उसकी वर्तमान की प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हैं तो ऐसा लगता है ये कभी तो कभी गुस्सा नहीं करते, ये खेलने का उम्र है। मन वचन का इतने चंचल रहते हैं, ये खेलने का उम्र है, लेकिन घंटों घंटों तक बैठ करके वो प्रवचन सुनती, अभी भी कहीं बैठी हो प्रवचन ही सुन रही हो। कहाँ है निर्जरा? हाँ वहाँ बैठ करके प्रवचन सुन रही, क्वेश्चन निकाल रही हो मेरे प्रवचनों से। वो माता पिता को पूछेगी, उनको उनको उत्तर देना नहीं आया तो माता पिता मेरे पास आते हैं, महाराज ऐसे प्रश्न पूछ रही थी इसका उत्तर क्या है, पूछ करके बताना पड़ता है निर्जरा को। देखिए आप, इतनी छोटी उम्र में बच्चे कभी एक जगह बैठ करके कुछ एकाग्रता से काम कर सकते, लेकिन उसका लक्षण देखिए आप, कुछ अलग अद्भुत है, अलौकिक। अलौकिक लक्षण है, अद्भुत संस्कार है। देखो बेनाड़ी जी पंडित के क्या भाव, पंडित जी के क्या भाव हो गए, उसको हम सम्मान नहीं करना चाहते, उसको गोद लेना चाहते हैं। और निर्जरा इनके पास चली जाएगी ना, एक साल में सारे जैन धर्म के शास्त्रों को पढ़ करके बाहर निकल आएगी। और इसीलिए गोद लेते हैं तो कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद, गोद ले करके उसको आगम का ज्ञाता बना दो आप। बहुत बड़ी वैयावृत्ति होगी फिर तो निर्जरा की, जैन धर्म की। निर्जरा की वैयावृत्ति आज गुरु बनकर हम करेंगे तो निर्जरा भी गुरु बनकर सबका कल्याण करेगी। हम जो परोसते हैं वही थाली में होता है और वही बांटना पड़ता है, और अगर वह गलत है तो फिर मेमोरी कार्ड में से पहले वाले को डिलीट करना पड़ता है और नया सेव करना पड़ता है। तो ये दोबारा काम होगा। निर्जरा को ऐसा नहीं, अच्छे गुरु मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों ने गोद ले लिया तो उसका कल्याण ही हो जाएगा। निर्जरा बड़ी होकर जैन शासन की प्रभावना करेगी। स्वयं आगम के ज्ञान को धारण कर लेना और अपना कल्याण करना, ये पहली वैयावृत्तिकरण भावना है, प्रथम आदि वैयावृत्तिकरण भावना, ये सबसे पहला होना चाहिए। आगम का ज्ञान आत्मा आत्मा के लिए प्राप्त करे, पर के लिए नहीं, ये वैयावृत्तिकरण भावना है। पहले किसकी वैयावृत्ति करे, पर की या स्वयं की? स्वयं की, क्योंकि आगम का ज्ञान भव्य जीवों को आत्म कल्याण के लिए है। उसका होना, आगम का होना, इस दुनिया में आगम ज्ञान भी है, उसका होने का प्रयोजन क्या है, आत्म कल्याण या पर कल्याण? पहला तो आत्मकल्याण, और आत्मकल्याण का वह पवित्र ज्ञान यहाँ पर आ गया आगम ज्ञान, तो ऑटोमेटिक बाहर बाहर में भी प्रभावना प्रारंभ होती है। पेड़ पर फूल खिलता है तो स्वयं सुगंधित प्रथम होता है, प्रथम वह स्वयं सुगंधित होता है, और स्वयं सुगंधित होने के पश्चात ही पूरे बगीचे को वह सुगंध फैला देता है। फूल को फिर कुछ कहना नहीं पड़ता, ये सुगंध फैला दो, ऐसे फूलों को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो सुगंधि ऑटोमेटिक फैलने लगती है। आगम का ज्ञान प्रथम तो आत्म कल्याण के लिए होता है, और वह ज्ञान आत्मा में आ गया तो उसके निमित्त से पर का कल्याण बाद में होता है। यदि हम आगम के ज्ञान को पर के कल्याण के लिए ही संग्रहित करके रखेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, तो फिर ये तो अभव्य जीव के समान काम हो जाएगा। जीव यदि भव्य होता है तो वह पर के लिए इकट्ठा नहीं करता, और जीव यदि अभव्य होता है तो वह स्व के लिए इकट्ठा करता ही नहीं। अभव्य जीव और भव्य जीव, इन दोनों का ध्येय ही अलग होता है। अभव्य जीव अपने आत्मा को टारगेट में नहीं ला सकता, और भव्य जीव पर को टारगेट में नहीं ला सकता। और यदि टारगेट में पर को रख कर के वह पर के लिए ज्ञान को संग्रहित करता है तो वह भव्य जीव भूला है भटका है लेकिन अभव्य नहीं, भूला है भटका है, अब जग सकता है, भूल को सुधार सकता है। भव्य जीव पर के लिए कुछ करता है, स्व के लिए नहीं करता है, तो यह करना तो सादी शांत है। सादी अनंत नहीं बनेगा, सादी शांत क्रिया है उसकी। भव्य भले ही वर्तमान काल में पर के लिए कुछ भी करता हो लेकिन एक न एक दिन जा करके वह स्व के लिए ही करेगा, पर के लिए भी करेगा, दोनों के लिए करेगा। एक न एक दिन जा करके दोनों कार्य करेगा। पर का कार्य नहीं भी करता है तो चलता है लेकिन स्व का कार्य करना ही चाहिए। कितने ही भव्य आत्माएं संसार से निवृत्त होकर वैरागी बन करके महाव्रतों को धारण करके केवल अपना ही कल्याण किया, पर का कल्याण किया ही नहीं। दीक्षा लेते ही वे अखंड मौन धारण कर लिए, उपदेश नहीं दिया तो पर का कल्याण कहाँ किया। ये एक दिन भी वाणी नहीं खिरी, मूक केवली बने, अरहंत अवस्था में भी पहुंच गए तो मूक केवली बनकर पहुंच गए, मूक केवली रहे, मुनि अवस्था में नहीं बोले और केवल ज्ञान अवस्था में भी नहीं बोले और ऐसा ही मोक्ष चले गए। ये स्व का ही केवल करने वाले भव्य आत्माएं होती हैं।
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री धनचंद्र निर्वाणे, श्रीमती सुनंदा निर्वाणे, जयसिंहपुर, नेमीनाथ खोत, श्रीमती शुभांगी खोत, सरोजनी परमाजे सांगली, पौत्र केतन कुमार खोत पुणे, पौत्रवधु श्रीमती मेघा खोत पुणे, दामाद श्री अभिजीत पाटिल पुणे, पोती श्रीमती नेहा पाटिल पुणे, खोत निर्वाणे पाटिल नवले परिवार महाराष्ट्र।